صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانیت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انقباض اسی طرح بعض اوقات انسان ذہنی انقباض میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان سوچ کر بولنے سے بڑی دور بھاگتا ہے اور لگتا یوں ہے کہ شاید آج کچھ ایسی ہی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تو چاہیے رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آج میں بولوں آپ حضرات اگر بولیں اور میں آپ کی گفتگو سے سیکھوں بھی اور اس کے جواب میں کچھ عرض کرنا چاہوں تو کر دوں تو آج آپ حضرات سوال کیجئے اور جواب میں دینے کی کوشش کروں گا جہاں تک ہو سکے یہ لیکن اس سے پہلے یہ کسی صاحب نے ایک سوال لکھا ہے اور یہ بات کلیئر کرنا میرے خیال میں زیادہ ضروری ہے کہ انہوں نے سوال یہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے زیادہ ضروری کیا ہے خاوند کی خوشنودی یا مرشد کی ایک بنیادی اصول اگر ہم یاد رکھ لیں تو پھر ایسے سوالات کا جواب ہمیں خود ہی مل جائے گا کہ وہ چیزیں جو رب تعالیٰ نے فرض کر دی ہیں ہم پر اس کو اگر ہم نہ کریں تو ہم اللہ کے حضور جواب دیں نفلی عبادت کے لیے جواب دے نہیں ہوتے ہم فرض عبادت نہ کریں گے تو ہم آنسریبل ہو جائیں گے اسی طرح جو حقوق رب تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں اگر ہم ان obligations کو ڈسچارج نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور آنسریبل ہیں کوئی بھی ایسا جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کا جواب ہمیں آسانی سے مل جائے گا اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اس ذہن میں رب تعالیٰ نے کیا چیز ہم پہ فرض کی ہوئی ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے ادا کر لیں پھر وہ جو چیزیں واجب ہیں ہم پر ان کی ادائیگی کر لیں اور نفلی عبادات کی آخر میں تو خاوند کے حقوق وائف پر اور وائف کے حقوق خاوند پر ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہیں اس کے لیے ہم اللہ کو جواب دے ہو جائیں گے تو خاوند کی خوشنودی پہلے ہے اس لیے کہ رب تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ بیوی پر فرض کیا کیا ہے اسی طرح خاوند پر کیا کیا فرض ہے یک طرفہ بات نہیں ہے کہ صرف خاوند کے ہی حقوق ہیں بیوی کے بھی حقوق ہیں خاوند پر تو خاوند کی خوشنودی زیادہ ضروری ہے بنسبت مرشد کے. تو اس میں کوئی دوسرا خیال ہو نہیں سکتا. انہی کا دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا یا دوسرے شہر جانا بغیر بتائے اور کسی اور کے گھر جو مجرم جو محرم نہ ہو رہنا کیسا ہے جبکہ وہ راہ سلوک پر چلنے کی دعوادار بھی ہو. ایک بڑی سمپل بات ہے کہ ہم جو حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ایک بیوی پر فرض ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر جانا چاہے تو خاوند کی اجازت سے جائے, اگر خاوند منع کر دے تو اسے نہیں جانا چاہیے, گناہگار ہوگی وہ. اسی طرح دوسرے شہر میں جانے کا یا کسی اور کے گھر میں جا کے رہنے کا. اور یہ جو لکھا کہ جبکہ وہ راہ سلوک پر چلنے کی دعوے دار بھی ہو, تو اس سلسلے میں میں ایک عرض کر دوں کہ دعوے دار ہونا ایک چیز ہے اور چلنا ایک اور چیز ہے. تو جو آدمی راہ سلوک پر چل رہا ہے وہ دعوے دار تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی. پہلی بات تو یہ ہے, جو دعوے دار ہے وہ نہیں چلتا, سادہ بات ہے. تو کسی کے دعووں پہ بنیاد کر کے ہم اس راہ کو یا اس علم کو برا کیوں سمجھیں؟ ٹیسٹ موجود ہے. میں کہتا ہوں میں دعوے دار ہوں کہ میں مسلمان ہوں, سیدھی بات ہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانتا ہوں یا نہیں مانتا, قرآن کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا. ایک سیکنڈ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ صرف دعویٰ ہے میرا یا میں واقعی مسلمان ہوں. تو اسی طرح راہ سلوک پہ چلنے والا, یاد رکھیے کہ سلوک کی راہ میں دعوے نہیں ہوتے, جو دعوے کرتا ہے وہ سلوک کے راہ کا راہ رو نہیں ہے. تیسرا ان کا ایک سوال یہ ہے کہ بغیر عذر شرعی طلاق کا مطالبہ یا علیحدگی اختیار کرنا کیسا ہے جبکہ خاوند بار بار بلاتا اور مناتا بھی ہو, کیا ان خاتون کے لیے مصیبت کا باعث ہے اور اللہ کی ناراضگی کا ہے یا نہیں؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ عذر شرعی سے ان کی مراد کیا ہے, اور اگر میں اپنی وائف سے بغیر کسی وجہ کے ناراض ہوتا ہوں تو پھر دو ہی صورتیں ہیں, کہ یا میرے دماغ میں کوئی خلل ہے, ذہنی طور پہ میں صحت مند نہیں ہوں, یا میں بتا نہیں رہا کہ مجھے شکایت کیا ہے بیوی سے. کیونکہ اگر میں نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے, والدین نے ڈھونڈا, میں نے خوشی سے کہہ دیا کہ قبول ہے, تو پھر بغیر کسی وجہ کے اگر میں وائف سے ناراض رہوں تو پھر دو ہی صورتیں ہوں گی, یا میں دل کی بات کہہ نہیں رہا یا میرے دماغ میں خلل ہے. یہ دونوں ہی چیزیں ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی وائف کا رویہ یہ ہے तो बेहतर है कि आप आमने सामने बैठ के एक दूसरे की शिकायत सुन लीजिए और कोशिश कीजिए कि वो दूर हो जाए। अगर वो बेगम साहबा आपको कोई रीजन बताने को तैयार नहीं है तो फिर अपने वालदैन या बहन भाइयों में से जो आपकी बेगम के ज्यादा करीब हैं उनसे कहिए कि वो पूछ लें ताकि वो वजह बता दें। तो अगर वो शिकायत जायज हैं तो आप उन्हें दूर कर दीजिए, अगर जायज नहीं है गलतफहमी तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मसला हल हो जाएगा आपका। ये किसी फॉरेन कंट्री से कुछ जो सवालात आए थे उनमें दो रह गए थे, इनका एक तीसरा सवाल ये था जिसका जवाब नहीं दे पाए हम कि इन सूरह बकरा because the verse 77 states it's not righteousness that you turn your faces to the east and west but righteous is he who believes in Allah and the last day and angels and the scripture and the prophets and given his wealth for love of him to kinsfolk and to orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask and to set slaves free and observe the proper worship and pay the poor due and those who keep their treaty when they make one in the patient in tribulation and adversity in the time of stress. Such are they who are sincere. Such are the God-fearing. It seems to me the summary of for Sufism, especially when love factor is added in all actions and thoughts. For Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, please explain what is the proper worship. Akama salat mentioned in the holy verse. दिक्कत हमें सिर्फ एक वजह से आती है कि हम ये समझ रहे हैं कि सूफीज्म कोई एक अलहदा चीज है। ये अलहदा नहीं है, हमारे यहाँ जैसे अंग्रेजी में एक लफ्ज है गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीन डिग्रीज हैं उसमें। सुपरलेटिव डिग्रीज डिग्री जो है वो है बेस्ट। बात ये है कि अल्लाह ने इबादत हम पे फर्ज की हैं, हम उन इबादत की अदायगी करते हैं, फराइज की अदायगी करते हैं। अल्लाह ने कुछ चीजें हम पे फर्ज की हैं, जैसे इस सूरह बकरा की आयत 77 में है कि जो माल अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, मसाकीन को देते हैं, जरूरतमंदों को देते हैं। अब जो आदमी अल्लाह के नाम पर खैरात करता है वो इनाम पाता है, लेकिन इसके अंदर फिर आगे डिग्रीज हैं कि एक आदमी सिर्फ फर्ज इबादत करता है लेकिन दूसरा शख्स फर्ज इबादत भी करता है और नफली इबादत भी करता है। एक आदमी अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के नाम पे खर्च करता है, दूसरा आदमी आधा माल दूसरों को दे देता है, आधा अपनी जरूरियात के लिए रख लेता है। एक आदमी है वो कहता है मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, तो जो कुछ उसके पास है वो दे देता है। और जब वो ये दे रहा होता है तो इतनी आजिजी के साथ देता है कि जिसको दे रहा है लेने वाला ये समझता है कि मैं इस आदमी से लेके इस पर एहसान कर रहा हूं, वो इस खूबसूरती से देता है। ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई अल्लाह के दिए हुए माल में से देने को। ये जो सुपर सूफीज्म है ये असल में इस डिग्री पर जाकर रब ताला के अहकामात की बंदगी करना है, उसकी इताअत करना है, है यही चीज सिर्फ डिग्री उसकी आगे चली गई। तो उसको लोगों ने नाम सूफीज्म का दे दिया जो शरई चीजें हैं उनको माने बगैर उनकी पाबंदी किए बगैर शरीयत को फॉलो किए बगैर कोई शख्स सूफी हो ही नहीं सकता। तो अगर हम इसको कुछ ऐसी चीज समझ लें जो कुछ अलहदा से स्टैंडर्ड है तो वो तो फिर टोटली गलत ही हो जाएगा काम। ये तो अल्लाह की बंदगी में बहुत हद तक आगे जाने का नाम सूफीज्म है। इनका चौथा सवाल थोड़ा सा ये मुझे देखना पड़ेगा कि इन्होंने किस सूरा को रेफर कर दिया, उसकी कौन सी आयत को, उसके बगैर देखिए इसको बयान करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा कि गलती का इस्तेमाल ज्यादा है। तो मैंने जैसे बहुत से मौकों पर कहा कि मैं कुरान पाक का हाफिज नहीं हूं, तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये किसको रेफर कर रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। तो फिर मैं अर्ज कर देता हूँ, ये आयात का मामला ऐसा है कि तो पहले भी दो तीन मौकों पे मैंने अर्ज किया कि नाजिल हुआ कुरान पाक एक खास तरतीब से, उसके बाद कुरान पाक को दूसरी तरतीब दे दी गई किताब की शक्ल में। तो वो पहली जो है वो तरतीब नजूली कहलाती है कि जिस तरतीब में नाजिल हुआ। तो बाज़ का एक एक आयत नाजिल हुई उसी सब्जेक्ट पर, दूसरी आयत दरमियान में 10-20 और आयत नाजिल हो गई, फिर कोई मौका आया तो उसी सब्जेक्ट पर फिर एक और आयत नाजिल हो गई। यही वजह है कि जब हम कुरान पाक को देखते हैं तो एक ही सब्जेक्ट पर हमें आयात मुख्तलिफ सूरतों में जगह जगह मिलती हैं। तो एक सब्जेक्ट पर एक आयत है उसको अगर एक्सप्लेन करना है तो हम फिर एक पूरी इसकी बैकग्राउंड पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उन तमाम आयात का हवाला देंगे जो मुख्तलिफ सूरतों में हैं, और फिर इस आयत की तशरीह अगर होगी तो दुरुस्त होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि आम तौर पर जैसे डॉक्टर इसार जैसे स्कॉलर भी जब आयात की तशरीह करते हैं तो सामने कुरान पाक रखा हुआ होता है। और दूसरे उलेमा भी इस पे चांस नहीं लिया जा सकता। तो मैं तो वैसे ही हाफिज नहीं हूं, तो इसलिए मैं जब भी आप किसी आयत की तशरीह का कहते हैं तो मैं आपसे हमेशा ये कहा करता हूं कि इसकी मैं बैकग्राउंड पहले देख लूं, तो उससे मुतल्लिका बहुत सी सूरत आयात मुझे मिल जाएंगी मुख्तलिफ सूरतों में, उनकी तशरीह उस कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगी, और फिर जो बात की जाएगी गलती का एहतमाल फिर भी रहेगा, हम इंसान हैं, लेकिन बहुत कम रह जाता है एहतमाल उसमें। तो इसलिए मैं माजरा चाहता हूं, क्योंकि या तो वो क्लियरली लिख देते तो मैं इसकी बात कर देता। ये पहला सवाल इंसाफ का उसी तरह से है जैसे अभी मैं बात कर रहा था, तो लेकिन दूसरा सवाल इन्होंने वो कहीं हरूफ मक्तियात की का जिक्र करते हुए मैंने अर्ज किया होगा कि जो हरूफ मक्तियात हैं उनमें से एक हर्फ ऐसा है जिसका जिक्र करने से रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। तो इंसान ने फरमाइश की है कि वो हर्फ बता दूं, शायद किताब में छपने से ये रह गया हो कि उसी दौरान मैंने ये भी अर्ज किया था कि जिन चीजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया उसको कोई फकीर भी किसी ने बयान नहीं किया उसको पब्लिकली, वो इल्म आपको खुद अता हो जाता है जब आप फकर के और वलायत के एक आला मकाम तक जाते हैं, तो फिर जब आपको इल्म लुदूनी हासिल होता है तो उसकी भी एडवांस स्टेजेस पर जाके इन हरूफ का इल्म अता हो जाता है। यही वजह है कि जनाब दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब जैसी शख्सियत, जनाब ख्वाजा करीम नवाज साहब जैसी शख्सियत, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जिनकी परवाज़ सज़ातुल मुंतहा तक थी, इनके पास ये इल्म मौजूद था हरूफ मक्तियात का, लेकिन बयान नहीं फरमाया। तो इनका बयान करना वो तो मैंने आपको हरूफ मक्तियात की अहमियत बताने के लिए ये जिक्र कर दिया कि ये ऐसे हरूफ हैं जो मुख्तलिफ शोबे जो हैं उनको यूं कह लें कि रूल करते हैं, या अगर उनका विर्द किया जाए तो उन शोबे में इंसान पर दरवाजे खुलने लगते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिकली उसे बयान नहीं किया जा पाएगा। हम इल्म की बात को जब इल्म के एंगल से ही देखते हैं तो उसके फवायद हासिल होते हैं, जब हम इल्म से दुनियावी फवायद हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज कोई ज्यादा मुनासिब नहीं रहती, ना इल्म मिल पाता है ना दुनिया मिल पाती है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि ये जो इल्म लुदनी है ये तो हासिल ही उस वक्त होता है जब हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि दिल में मेरे हुब्बे दुनिया हो और इल्मे लुदुनी भी हासिल हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं हुआ। तो इसलिए ये मेरी गुजारिश ये होगी कि इल्म को इल्म के ही तौर पर हम देखें, उसे दुनिया कमाने की फिक्र में ना पड़ जाए हम। एक कोई साहब ने कुछ चीजों पर फतवे के लिए फरमाया, मैं एक बार फिर वादे कर दूं कि फतवा सिर्फ मुफ्ती दे सकता है, वो उसके अलावा कोई दूसरा आदमी मुजाज नहीं है। तो इस तरह की चीजें अगर आम आदमी के पास रेफर करेंगे तो वो शख्स भी गुनाहगार होगा और आप भी भटकेंगे। तो जो फतवे से मुतालिक चीजें हैं उनको मुफ्ती साहब ही को रेफर कर दीजिए। एक किसी साहब का सवाल है कि क्या ये डिस्टाइंड होता है कि किसी खातून को वली अल्लाह की वालदा होने का शर्फ अता होता करता है, या कोई खातून अल्लाह को राजी करके अल्लाह से दुआएं करके अपने रब से जिद करके ये मकाम ये शर्फ मांगती है। जिस तरह इज्जत के बारे में ये बात है कि ये मांग कर नहीं ली जा सकती, इसे अर्न करना पड़ता है। इल्म मांग कर नहीं लिया जा सकता, ये रियाजत के जरिए ही आएगा। हाँ, अगर कोई साहब खुश होके आपको अता कर दें वो थोड़े अरसे के लिए होगा, कुछ अरसे के बाद वो वीक होगा, अता के खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो मकाम है वो अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, ये तो दुआ करना बहुत अच्छी बात है कि कोई माँ अगर ये दुआ करे कि या अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा दे जो तेरी राह पर चले और मेरे लिए नेक नामी और सरबुलंदी का सबब हो, ये बहुत अच्छी दुआ है, करनी चाहिए, बाप को भी करनी चाहिए। लेकिन अपने लिए वो मकाम मांगना कि या अल्लाह मुझे ये मर्तबा अता फरमा दे कि मेरा बेटा तेरी राह पर चल रहा हो, उसके मायने ही कुछ और हो जाएंगे। तो दुआ ये मांगनी चाहिए, और माएँ बहुत सी मांगती भी हैं कि या अल्लाह मुझे औलाद वो दे जो तेरी राह पर चलने वाली हो और मेरे हमारे लिए खानदान के लिए नेक नामी और सरबुलंदी का बाइस बने। तो ये दुआ की जा सकती है। तो दूसरा इनका सवाल, इस पर भी रोशनी डाल दें कि पहले ज़माने में ख़वातीन वली अल्लाह औलाद की तरबियत के नतवार से किया करती थी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी हाईलाइट फरमा दें। इसमें जो बुनियादी अहमियत की चीज़ है वो तो आप सभी जानते हैं, वह है रिज़्क़े हलाल। और ये रिज़्क़े हलाल इस कदर तलवार की धार पर चलने वाली बात है। ये ठीक है कि मैं रिश्वत ना लूं, ये भी ठीक है कि मैं चोरी का माल ना घर में लाऊं, लेकिन अगर मैं कहीं मुलाजिम हूं तो मैंने टाइम अपना बेचा हुआ है, अगर इस टाइम के दौरान फर्ज कर लीजिए ऑफिस आवर्स 9 to 5 हैं, वो टाइम मेरा बिका हुआ है, जो मेरा एम्प्लॉयर है उसने खरीदा हुआ टाइम है मेरा, हो तो इस दौरान अगर मैं अपने ज़ाती टेलीफोन कॉल सुनने में वक्त ज़ाया करता हूँ, पर्सनल विजिटर्स आते हैं मेरे, मैं ऑफिस के काम से उठ के बाहर गया तो रास्ते में आधे घंटे में काम कर लिया, आधा घंटा अपने किसी दोस्त के पास बैठ के गपशप मार के आया, तो ये सब बदयानती की जिम्मे में आ जाएंगी बातें। लोग जो जिन्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी अपनी राह पे चलने की, वो तो इतने मोहतात हैं कि जो उनके पास दफ्तर में इस्तेमाल के लिए स्क्रिबिंग पैड है, छोटा सा जो बॉल पॉइंट है, पेंसिल है, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने ज़ाती कामों के लिए। घर उठा के ले जाना तो बड़ी दूर की बात है, अगर ज़ाती काम की अगर स्लिप लिखनी है तो जेब से अपना पेन निकाल के अपना एक कागज़ लेके उस पर लिख के आपको दे देंगे कि ले लीजिए, कि उनके नज़दीक ये भी बदध्यानती की एक किस्म है। तो अगर अल्लाह ने किसी को ये एहसास बख्शा कि उसके घर एक पैदाइशी वली पैदा हो गया है, तो वो रिस्क हलाल उसको खिलाना पहली बात है। दूसरा, जो रब ताला ने हमें तफसील समझाई है कुरान के जरिए से, फिर आप अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए से, वो डूज एंड डू नॉट्स उस पर खुद पूरी तरह से अमल करेंगे वालदैन, और उस बच्चे की तरबियत करेंगे तो वो अल्लाह की राह पे ही चलेगा वो। तो इसके जो आपने ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मुझसे अर्ज किए थे, वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड यही हैं कि एक तो मैं अगर ये चाहूँ कि मेरी औलाद अल्लाह की राह पर चले, तो पहला कदम तो यही है कि मैं शिद्दत से एहतियात करूं कि मैं रिस्क हलाल खिलाऊं अपने औलाद को। दूसरा यह है कि मैं खुद पाबंद हूं, उर्फ़ आम में बात अगर करें कि शरीयत का पाबंद हूं मैं, तो दरहकीकत जब हम कहते हैं शरीयत के पाबंद हैं तो उससे मुराद वही होती जो मैं आसान जुबान में बात कर रहा हूं कि हम डूज एंड डू नॉट्स के पाबंद हो जाए बड़ी शिद्दत के साथ। तो औलाद रब ताला नेक ही देगा फिर। इनका एक और सवाल है जो थोड़े थोड़े अरसे के बाद आता रहता है कि क्या मुर्शिद के विसाल के बाद मुरीद के हर पल याद करने से मुर्शिद का मुरीद से ताल्लुक रहता है और इन कांटेक्ट रहते हैं, और कैसे है? अगर मुर्शिद सही थे और मुरीद भी सही है तो ये ताल्लुक कायम रहता है, इंसान को गाइडेंस मिलती रहती है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि अगर मुरीद सही है, मुर्शिद सही है, तो मुर्शिद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद मुरीद का ताल्लुक या मुरीद के दिल से उनकी याद खत्म हो जाए। तो इस तरह से मामला है कि चूंकि मुरीद अपने मुर्शिद को आइडियलाइज कर रहा होता है, आइडियलाइज किए बगैर हम मुर्शिद का हक अदा ही नहीं कर पाते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब तक हम आइडियलाइज नहीं किसी को करते, उसको हम फॉलो भी नहीं करते। तो जब मुर्शिद साहब को आइडियलाइज करते हैं तो जिंदगी में जहां कहीं कोई काम करने लगते हैं तो ज़हन फौरन जाता है कि मेरे मुर्शिद ऐसे किया करते थे तो मैं ऐसे करूंगा। तो जब आदमी यूं सोचता है तो मुर्शिद की याद तो ज़हन से एक लम्हे को भी नहीं निकलती। तो जब वो एक लम्हे को याद नहीं निकलती तो कांटेक्ट तो रहा कि आप अपने मुर्शिद को कॉपी करते हैं, तो कांटेक्ट खुद ब खुद ही कायम रहता है। अगला सवाल ये कि अगर मुरीद की तरबियत अभी बाकी रहती थी तो क्या वो सिलसिला जारी रहता है या रुक जाता है? नहीं, अगर मुर्शिद सही है तो ख्वाब के जरिए से या ख्याल के जरिए से तरबियत होती जाती है। जहां इंसान अटकता है तो या तो ख्वाब में गाइडेंस मिल जाएगी, नहीं तो ज़हन में अपने आप ख्याल आ जाएगा कि मुझे ये काम ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए। तो वो ताल्लुक रहता है, तरबियत भी होती रहती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।